कुछ हमने पढ़ा है उसका, तो जो भी है फॉर्मल तो खैर नहीं है, इनफॉर्मल ही है, लेकिन वो कल इंशाल्लाह उसको करके, यानी पीछे का एक क्विक ओवरव्यू करके फिर हम आगे बढ़ेंगे उस रशाशी में। तो आज फिर सूरह अज़ाब की तफसीर ही को कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 137 पर थे, राइट? वो जो जंगे जमल से पहले के वाकयात चल रहे थे, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेज 136 के सेकंड पैराग्राफ को मैं जरा दोबारा पढ़ूंगा कि हजरत सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजबूरी का अंदाजा था, दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम था कि हजरत उस्मान गनी की शहादत रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुसलमानों के कुलूब जख्मी है। यानी तस्वर करें कि वो हालात कितने मुश्किल हालात थे मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों के ऊपर, कि जब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपके दफन करने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को दफन नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी को जो बलवाई लोग थे, फसादी लोग थे, इनसे हिफाजत कैसे करें कि वो आपकी बॉडी को मसला ना करें, क्योंकि उस जमाने में ये बहुत आम था कि जिसके ऊपर बहुत गुस्सा निकालना होता था ना, तो बॉडी को जो है वो मसला कर देते थे, काट पीट देते थे, नाक कान आंख वगैरह निकाल दिया करते थे, ठीक है। तो उस्मान रजी अल्लाह की बॉडी को महफूज करके कैसे दफन किया जाए, तो आपको दफन जो है वो रात की तारीकी में किया गया, और कहाँ किया गया, जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया, हालांकि सारे सहाबा जो है वो जन्नतुल बकी में दफन होते थे, आपको जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया, बल्कि जन्नतुल बकी के पीछे दफन किया गया मजीद आगे जा करके, ठीक है, ताकि किसी को पता ही ना लगे कि कब्र आपकी कहां पर है, और कोई छोटी मोटी सी निशानी छोड़ दी गई होगी ताकि कम से कम जानने वालों को पता हो कि हाँ यहां पर दफन किया गया है, लेकिन वो कब्रिस्तान के बाहर इलाका था। आज जो आपको हजरत उस्मान गनी रतान की कब्र जन्नतुल बकी के अंदर नजर आती है ना, वो इस वजह से है क्योंकि जन्नतुल बकी एक्सपैंड हो गया है, ठीक है, तो एक्सपैंड होकर के फिर हजरत उस्मान गनी रतान की कब्र अब जो है वो सेंटर में आ गई है, लेकिन पहले ये बकी से बाहर थी, ठीक है। तो ये हालात थे, अब इन हालात के अंदर अली रज़ी अल्लाह के ऊपर जो प्रेशर था कि उन लोगों को कैसे सजा दें, तो ये कोई मामूली प्रेशर नहीं था, ये बहुत मुश्किल हालात थे। दूसरी तरफ ये भी मालूम था कि उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत से मुसलमानों के कुलूब जख्मी हैं, और उनके कातिलों से इंतकाम लेने में ताखीर जो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मजबूरी देखी जा रही थी, और मजीद ये कि कातिलान उस्मान रज़ी अल्लाह अन अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन यानी अली रज़ी अल्लाह की मजालिस में भी शरीक होते थे, ठीक है। यानी तसव्वुर करें कि कितने बड़े ये मुनाफिक और बलवाई फसादी थे कि खलीफा सालिस को शहीद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कैसे निडर थे और कैसे बेबाक और कैसे इनमें ऑडेसिटी थी कि ये अली रज़ी अल्लाह की मजलिस में शरीक होते थे, ठीक है। तो इससे एक और भी बात सामने आती है कि मशाइख की मजालिस में जो शरीक होते हैं ना, वो सारे के सारे उनके मुरीद नहीं होते, ठीक है, वो सारे के सारे उनके उनके तालिब इल्म सालिक और आशिक सादिक नहीं होते, ठीक है, मुनाफिकीन भी आकर के बैठते हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मुनाफिकीन आके बैठते थे, ठीक है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मुनाफिकीन बैठ सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि जी हर शेख की मजलिस में जो लोग बैठे हुए हैं तो वो सारे के सारे शेख की बात मानने वाले भी होंगे, वो शेख से जो है वो मशवरा करने वाले भी होंगे, शेख को जो है वो इज्जत की निगाह से देखने वाले भी होंगे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है मजलिस में आके बैठ जाना, ठीक है। तो सोहबत की जो बरकतें हैं ना, कि सोहबत से फायदा होता है, अल्लाह वालों की सोहबत रंग लाती है, और अल्लाह वालों की सोहबत से जो है वो इंसान को जो है वो मर्तबे मिल जाते हैं, ये सब का सब मशरूत है, ठीक है, ये सब का सब मशरूत है। किस चीज से मशरूत है? इखलास से मशरूत है, ठीक है। और इखलास का मतलब जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो नेक नियति से आ रहा है, बल्कि मानने की नियत से भी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि मैं अल्लाह को पाना चाहता हूं, मैं आखिरत पाना चाहता हूं, मैं जन्नत में पहुंच जाना चाहता हूं, बल्कि इस शेख की मानने की नीयत भी होनी चाहिए। इसके बगैर भी इखलास मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। तो इखलास जो है वो सिर्फ अल्लाह और जन्नत के लिए नहीं होता, बल्कि अताअत की नीयत जब शामिल होगी तब इखलास मुकम्मल होगा, वरना उसके बगैर इखलास मुकम्मल नहीं होता। तो अगर कोई शख्स जो है वो मानने की नीयत से ना आता हो ना, और खाली जो है वो अल्लाह और जन्नत तक पहुंचने की नीयत से आए और मानने की नीयत वो बनाई ना, ठीक है, शुरू में तो चलो नीयत नहीं होगी उसकी, लेकिन वो सालों गुजार दे और वो मानने की नीयत ना बनाए, तो ऐसे शख्स को भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो यही मामला इनकी मजलिस में भी था कि जी ऐसे लोग उनकी मजलिस में शरीक हुआ करते थे, अल्लाह ताला की मजलिस में। जो लोग हजरत अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह की मजबूरी से वाकिफ नहीं थे, उनको इस मामले में इनसे भी शिकायत पैदा हो रही थी, ठीक है। यानी एक आम सी बात है, तभी तौर पर लोग ये समझते हैं कि जी जब ये मजलिस में शरीक हो रहे हैं तो फिर शेख साहब जो है वो टोकते क्यों नहीं है, उनकी गलत बातों के ऊपर मना क्यों नहीं करते, और अपनी मजलिस में आने की इजाजत क्यों दे देते हैं ऐसे लोगों को। भाई इजाजत से मना नहीं किया जा सकता, ये मना कर देना जो है ये आसान काम नहीं होता, इससे बड़े मफासिद मजीद क्रिएट होते हैं। नबी अलैहि सलाम मुनाफिकीन को मना नहीं करते थे अपनी मजलिस में आके बैठते, हालांकि पता होता था कि ये मुनाफिकीन है, राइट। अब्दुल्ला बिन उबई को सजा नहीं देते थे मुनाफिकत के ऊपर, हालांकि वो साजिशें करता था पीछे पीठ पीछे और क्या क्या नहीं करता था, लेकिन नबी अलैहि सलाम उसको कत्ल नहीं करवाते थे, हालांकि ऐसी साजिशें करता था जिसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते थे, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने मशवरा भी दिया कि इसको कत्ल करवा दें, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो खुद ऑफर किया कि मैं कत्ल कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, ठीक है। कि और बात क्या कही, बात ऐसी कही कि जो कि हमारे समझ में ही ना आए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये अपने साथियों को कत्ल कर देते हैं, ठीक है। अब हमने दीन में क्या सीखा है कि भाई इसकी परवाह ना करो कि लोग क्या कहें, है ना, हम दीन में ये सीखते हैं ना कि इसकी बात पर इसकी परवाह ना करो कि लोग क्या कहें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, ठीक है भाई। दीन इस्लाम नाउज़ बिल्ला, मैं समझाने की खातिर बोल रहा हूँ कि दीन इस्लाम के फायदों को सामने रखना चाहिए था, अल्लाह की रजा को सामने रखनी चाहिए थी, और जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए था, और उनकी गर्दन उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कैसी बात हो गई कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ना वो सिर्फ यही है कि नबी अलैहिस्सलाम जो थे वो अमीर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, अमीर की कुर्सी पर, ठीक है। और अमीर की कुर्सी में जो उनको जो जो वो यानी जो डिसीशंस लेते थे ना, तो वो डिसीशंस जो है वो मामले की नजाकत के मुताबिक लेते थे, ठीक है। तो उनके लिए ये बात जायज थी कि वो इस बात का ख्याल रखें कि जी अवाम के अंदर कैसे जज्बात चल रहे हैं, ठीक है, कैसी सरासीमगी तो नहीं फैली हुई है, किसी वजह से जो है वो एक फसाद की शक्ल तो नहीं पैदा हो जाएगी, ये सारे अमीर के काम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि वो अमीर की बात को मान करके चले, ठीक है। अगर नीचे वालों को अमीर ने ये हुक्म दिया है कि तुम लोगों की परवाह मत करो, राइट, कि तुम लोगों की परवाह मत करो बल्कि तुम ये काम करो, ठीक है, परवाह किए बगैर, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो ऊपर वाले की बात मान करके वो काम करे और लोगों की परवाह ना करे, ठीक है। क्योंकि उसकी पोजीशन यहां पर अमीर की नहीं है, बल्कि उसकी पोजीशन जो है वो यानी मुती की पोजीशन है, ठीक है। तो मुती को ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उसको अमीर का हुक्म देखना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन से डिपेंड कर, पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में रह करके काम कर रहे हैं। अक्सर औकात घर का जो बड़ा होता है वो चूंकि घर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर घर के तनाजुर में वो अमीर होता है, ठीक है, तो वो कभी ऐसा कर सकता है कि जी लोगों के तान से तानों से बचने के लिए वो कोई ऐसा काम करे जो कि अदरवाइज सबसे बहादुरी वाला काम नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो अमीर है ना, तो उसको जो है वो आप ब्लेम नहीं कर सकते इस काम के ऊपर, ठीक है। तो अमीर की पोजीशन अलग होती है, वहां पर चीजों को देखने का अंदाज डिफरेंट होता है, और जो मुती होते हैं यानी जो 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 नीचे के फॉलोअर्स होते हैं वहां पर मामला डिफरेंट होता है। तो ये बात हमेशा याद रखें, इस वजह से अमीर के ऊपर जो है ना वो कंफ्यूज जा सकती कि इनको तो तवक्कुल को देखना चाहिए था, और उनको तो अमीर का काम यह है कि वो मशवरे करे, नेक लोगों के साथ मशवरे करे, और मशवरे करने के बाद जो है ना वो फैसला खुद करे, ठीक है। तो वो जो भी फैसला होगा ना वो अमीर का फैसला माना जाएगा, अमीर की जिम्मेदारी थी मशवरा करना, लेकिन फैसला करना उसने खुद होता है। हाँ, अगर अमीर मशवरा ही ना करे, ठीक है, नेकों से मशवरा ना करे, बल्कि मुशरिकों से, काफिरों से और बिदतियों से और फासिकों से और फाजिरों से मशवरा करे, ठीक है, और उसके बाद कोई फिर वो कोई कदम उठाए, तब उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है कि तुम क्यों नहीं मशवरा करते हो नेक लोगों से, ठीक है, तुम क्यों जो है वो फासिकीन फाजरीन से मशवरा करते हो, और फिर तुम जो है वो कोई काम करते हो, ठीक है। तो मशवरा ना करने के ऊपर उसके ऊपर तनकीद की जाएगी। अमीर चाहे कैसा भी हो, अमीर चाहे कैसा भी हो, उसकी शर्त जो है ना वो सिर्फ ये है कि उसको ईमान वाला होना चाहिए, ठीक है, मुसलमान होना चाहिए जाहिरी तौर पर, ठीक है। दिल का हाल किसी को नहीं मालूम होता किसी के बारे में कि वो अंदर से कैसा है, ठीक है, ऊपर से वो मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, इस्लामी शायर के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होने के अंदर डेफिनेशन जो है वो इतनी सी है कि वो मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, और दीन इस्लाम का इनकार करने वाला नहीं होना चाहिए, दीन के जो है वो लवाजमात का इनकार करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, लवाजमात जिनको कहते हैं, ओके, यानी बेसिक अकायद और जरूरी अकायद जो होते हैं और जरूरी इबादात जो होती है इनका इनकार करने वाला, ठीक है। और दूसरा ये कि वो लोगों को हराम का हुक्म ना देता हो, अगर वो हराम का हुक्म देगा तो ला ताअता फी मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, पहले उसूल पर अमल किया जाएगा और उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर वो अमीर जो है वो इन दो क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है ना, तो उसकी अताअत जो है वो लाजिम है मुसलमान आवाम के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से हमारी तारीख जो है वो वाकयात से भरी हुई है, हमारे बड़े बड़े मशायख जो हैं वो अमीर के खिलाफ बगावत बिल्कुल नहीं करते थे, अमीर के खिलाफ बगावत नहीं करते थे, बल्कि साथ मिलकर के चलने की कोशिश करते थे, ठीक है, हमेशा ऐसे होता था। चाहे वो हज्जाज बिन यूसुफ जैसा अमीर हो, चाहे वो जो है शराब पीने वाला, ऐसे ऐसे भी बनू उमैया के अंदर, बनू अब्बास के अंदर ऐसे ऐसे भी खलीफा गुजरे हैं, मस्जिद नबवी में आके शराब पीते थे, मस्जिद नबवी में शराब पी इन लोगों ने आकर, ठीक है, लेकिन बगावत इन इमामों ने उनके खिलाफ भी नहीं करी, ठीक है, जो कि सही और अकीदा और सही मुत्तकी परहेजगार इमाम जो होते थे उन्होंने बगावत नहीं करी इनके खिलाफ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जो कि यानी पता नहीं होती अवाम उन्नास को, उलमा को खाली इसका अंदाजा होता है, तो इस वजह से उलमा का एक एटीट्यूड डिफरेंट होता है हुकूमतों के साथ, और अवाम का एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहरहाल इसके अंदर काफी वेरिएशन होती हैं हालात तो वाकयात के हिसाब से, उलमा ही जो है वो वही वही जो है वो सही फैसला कर सकते हैं, और हमें जो है बस उनके ऊपर एतमाद करना होता है, वो जिस चीज़ को मुनासिब समझते हैं उसी में खैर होगी, और हम बस उनकी अताआत के साथ जिंदगी गुजारें इसी में खैर होती है। आगे फरमाया कि जो लोग हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजबूरी से वाकिफ ना थे, उनको इस मामले में इनसे शिकायत पैदा हो रही थी, मुमकिन था कि ये शिकवा और शिकायत किसी दूसरे फितने का आगाज ना बन जाए, इसलिए लोगों को फहमाइश करके सब्र करने और अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुव्वत पहुंचाकर नज़्म मुमलिकत को मुस्तहकम करने और बाहिमी शिकवा और शिकायत को रफा करके इस्लाह बैन-उन-नास के कसद से बसरा का सफर अख्तियार कर लिया, जिसमें उनके मुहतरम भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह वगैरह उनके साथ थे। हजरत असमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे, जो बड़ी बहन थी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो महरम के साथ सफर किया, महरम के बगैर सफर नहीं किया। अपने इस सफर का मकसद खुद उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत काका रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बयान फरमाया था, जैसा कि आगे आएगा। और ऐसे शदीद फितने के वक्त इस्लाह बैनुल मोमिनीन का काम जिस कदर अहम दीनी खिदमत थी वो भी जाहिर है, इसके लिए अगर उम्मुल मोमिनीन ने बसरा का सफर महारिम के साथ और पर्दे के आहनी होदज में, होदज जो आपको पता है कि ऊंट के ऊपर जो एक छोटा सा कमरा सा रखा जाता था जो कि इंडिया के अंदर बड़े अरसे तक चलता रहा, हमने देखा भी है बकायदा उसको, तो पर्दे के आहनी होदज में इख्तियार फरमा लिया, तो उसको जो शिया और रवाफिज ने एक तूफान बनाकर पेश किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने अहकाम कुरान की खिलाफ वर्जी की, तो इसका क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। यानी शियाओं का जो तूफान है ام المومنین عطان کے خلاف، اس وجہ سے کہ جی کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کرنا فی بیوت کنہ، اور یہ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے انہوں نے جو ہے وہ مردوں کی قیادت کری اور انہوں نے علی عطان کے خلاف باقاعدہ جنگ کری، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. آگے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جو صورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی، اس کا خیال کبھی صدیق رہتا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سب کچھ ہونے والا ہے. بھئی فیوچر کا حال تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، اللہ تعالیٰ کی سوا. اس آیت کی تفسیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے واقعہ جنگ جمل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، مگر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لیے چند سطور لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ جمل جو ہے وہ صحابہ کے درمیان ہوئی تھی اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کا نام ہی جنگ جمل اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اونٹ پر موجود تھی. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہی روافض اور شیعہ جو ہیں، روافض اور شیعہ تقریباً ایک ہی قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں، یہ ایک یعنی یہ ایک عقیدے کا اختلاف ہے میجر. ٹھیک ہے، تو اس کو فرقہ کہتے ہیں دین اسلام کے اندر، فرقوں میں شامل ہوتا ہے شیعہ. دیوبندی بریلوی جو ہے نا، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہیں. اور یہ شیعہ اور روافض اور خوارج یہ سب جو ہیں یہ فرقے ہیں، کیونکہ ان میں میجر عقیدے کا ڈفرنس ہے اہل سنت والجماعت سے. ٹھیک ہے، باہمی فتنوں اور جھگڑوں کی وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں، ان سے کوئی اہل بصیرت اور تجربہ غافل نہیں ہو سکتا. یہاں بھی صورت یہ پیش آئی کہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر بصرہ کو منافقین اور مفسدین نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لیے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے لشکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں. اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس فتنے کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روک دیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بیچ کے، جو کہ انا نحنو مسلحون بنے ہوتے ہیں کہ ہم تو جی صلح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اپنی خیر کے کام کرتے ہیں نا، تو دراصل یہ جھوٹ بول بول کر کے جو ہے نا، وہ یا تو باقاعدہ دانستہ طور پر لڑائی کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ چونکہ ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، اب ان کی زبان سے جو ہے نا وہ الفاظ ہی ایسے نکل رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی بہت بڑے وہ لڑائی کروانے کی نیت لے کر کے نہیں آئے ہوتے، لیکن پھر بھی نا جیسا دل ہوتا ہے نا ویسی زبان سے کلماتے نکلتے ہیں. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے نا، تو زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے، خیر کے کلمات نہیں نکلتے، بلکہ لڑائی بھجائی کے ہی کلمات نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگ تقریباً نارملی گھروں کے اندر ظاہر یعنی مشاہدہ کرتی ہیں چیزوں کا. ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک ایسی ایسی فرد ہوتی ہے گھر کے اندر، یا ہوتا بھی ہے، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب جو ہے وہ امی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی خیر کے کلمات نہیں کہنے. سب جانتے ہیں، سب کے فیملی میں ایسے کیریکٹرز موجود ہیں، یا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم خود جو ہے وہ ایسا کیریکٹر پلے کرتے ہوں. اگر ہمارے دلوں میں نفاق ہے تو ہم کیوں کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے کیریکٹر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر گھروں کے اندر فساد ہوتا ہے، اور انہی کی وجہ سے باقاعدہ ملکوں میں فساد ہوتا ہے، اور یہ ہر لیول پر ہوتا ہے. یہ مدرسے کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ خانقاہوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ تبلیغ جماعت میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں تو یہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، دین میں جب ہوتے ہیں تو دنیا میں کیا کم ہوں گے، دنیا میں تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں. تو اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا فرض ہے کہ اس فتنے کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روک دیں. نبتہی ولنبت حضرت حسن اور حسین علی تعالیٰ کے دونوں حسنین کریمین، و عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کرام نے اس رائے سے اختلاف بھی کیا تھا، اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلے پر لشکر کشی اس وقت تک نہ کریں جب تک صحیح حال معلوم نہ ہو جائے. مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کثرت جو ہے وہ یعنی مخالفین کی تھی. اب یہ مخالفین جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ابھی آپ کو کہا نا کہ دل کے اندر ان کے مرض ہوتا ہے، ठीक है, तो दिल के मर्ज की वजह से जो है ना इन्होंने बुरी बात ही कहनी होती है, लड़ाई झगड़ा करवाना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं कि जो के फी कुलूब है मर्द की डेफिनेशन पर पूरे नहीं उतरते हैं, ठीक है ना, यानी वो जो है ना वो नियत के खराब नहीं होते हैं, दिल के खराब नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बस जो है ना उनकी जो अकल होती है ना, वो अकल जो होती है वो बहुत बसीरत वाली नहीं होती है, दे कैन नॉट सी वेरी फार अवे, ठीक है ना, बहुत दूर तक वो देख नहीं पाते हैं, उनको अल्लाह ताला ने एक महदूद सलाहियत देकर के भेजा होता है, ठीक है ना। और ये जो अकल के अंदर डिफरेंस है ना, समझ का डिफरेंस, ये एक नेचुरल डिफरेंस है जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों में रखा है, ठीक है, बेहतरीन इंसानों में भी ये डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर आपने वो हदीस सुनी है, बल्कि पढ़ी भी है, सूरा नसर की तशरी की तफसीर के अंदर, राइट, वो कौन सी वाली हदीस थी, याद है किसी को, सूरा नसर की तफसीर के अंदर कौन सी हदीस थी जिससे कि इस डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पता लगता है, जब सूरा नसर नाजिल हुई, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आप पर ये वही नाजिल हो रही है, और महफिल में कौन मौजूद थे, मुनाफिकीन भी थोड़ी मौजूद थे, सहाबा इकराम मौजूद थे, कामिल मोमिनीन मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ, इस सूरत को सुन करके सब खुश हो गए, ठीक है, सब खुश हो गए कि भाई अब फौज दर फौज लोग उस इस्लाम में दाखिल होने वाले हैं सिवाय एक के या दो के, ठीक है, अब्बास रतान के बारे में आता है या अबू बकर सिद्दीक रतान के बारे में आता है, ठीक है, कि वो जो है वो रोना शुरू हो गए, परेशान हो गए इस सूरत को देख करके, ठीक है भाई, क्यों परेशान हो गए, बाकी हंस रहे हैं, ये परेशान क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, लेवल डिफरेंट था अकल का, ठीक है ना, वो बात नहीं समझ पाए, हालांकि कामिल मोमिन है, जन्नती है, लेकिन बात नहीं समझ पाए और ये बात समझ पाए, ठीक है ना। तो यही मामला होता है कि इवन ये नहीं है कि जी सारे लोग जो के इस तरह का मशवरा दे रहे थे तो वो सारे के सारे मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम ना अपनी जुबान में कहते हैं जियाले, जियाले समझती हैं क्या होती हैं, ठीक है, जियाले जो होते हैं ना वो होते हैं जो कि बड़े नेक नियत होते हैं, ठीक है ना, बड़े फॉलोअर्स होते हैं बड़ों के, ठीक है, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन जज्बाती होते हैं, ठीक है, जज्बात उनके अंदर ज्यादा होते हैं, और जब जज्बात ज्यादा हो जाते हैं तो आपको पता है क्या होता है, अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, ठीक है, अकल जो होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है जज्बात से, जैसे कि अब खवातीन है, लेकिन खवातीन के खिलाफ एक बताहिर बात है ये कि जब यानी खवातीन की अकल जो होती है वो ज्यादा बात को नहीं समझ पा रही होती है, और उसकी वजह जो होती है ना वो कोई नेगेटिव रीजन नहीं होता कि नाउज बुला उनके दिल में मर्ज है और वो जो है वो नाउज बुला जो है वो बहुत गुनाह के काम कर रही है, बल्कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे, और जज्बात जो होते हैं वो अकल को मुतासिर करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर बहुत सारी डिफरेंट तफसीलात आ जाती हैं जिसका कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे मर्द भी होते हैं, ठीक है, कि जो जिनके ऊपर जज्बात गालिब होते हैं, जैसे कि जब नौजवान होता है कोई तो नौजवान के ऊपर जज्बात गालिब होते हैं बूढ़े होने के मुकाबले में, ठीक है, तो ऐसे नौजवान पे ना जियालों का काम करना शुरू कर देते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, वो गुस्से में आकर के जो है वो जो उनको मुखालिफ की तरफदारी करने वाला लगता है फिर उसके ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल सारे के सारे मौलाना तारिक जमी साहब के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ठीक है ना, वो कौन चढ़ दौड़ने वाले कौन है, सारे के सारे जियाले हैं, ठीक है, उनमें मुनाफिकीन भी होंगे यकीनन, ठीक है ना, काफिरों के एजेंट भी होंगे जो कि मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन उनमें अक्सरियत जो है ना वो जियालों की है जो कि बस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि इन्होंने किसी मुखालिफ की जो है वो हिमायत कैसे कर दी, हालांकि उन्होंने हिमायत करी नहीं है, उनके बात की तो आप मुख्तलिफ मतलब भी निकाल सकते हैं, उनकी तो आप तौजीह भी कर सकते हैं, उनकी आप तदबीक भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया है, ठीक है, लेकिन जाहिरी तौर पर ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है, अब ये सारे के सारे पीछे पड़ गए उनके, और जैसे कि मैंने सुना है, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है कि मौलाना तारिक जमील के खिलाफ जो है वो बहुत बुरी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो ये जियाले होते हैं, ठीक है, इन जियालों की हरकत यही होती है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं होता उनसे, वो चाहते हैं चढ़ दौड़े अगले फरीके मुखालिफ के ऊपर चढ़ दौड़े और उसको खत्म कर दें, ठीक है, तो ये हर जमाने में होते हैं, और ऐसे ही जियाले जो थे यहाँ पर भी मौजूद थे, ठीक तो इन्होंने अली रज़ा तआला को जो है वो ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि नहीं जी, अब तो आप यानी मुकाबला करें, आप अमीर वक्त हैं, आपको अल्लाह ताला ने जो है वो अमीर बनाया है, लोगों ने बैत करी है आपके ऊपर, आप इन लोगों को खत्म कर दें जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बागी हैं और बागियों का जो जो इलाज होता है वो कत्ल होते हैं। ठीक है, तो मुनाफिकीन और जियाले जो है ना ये मिल जाते हैं, मुनाफिकीन जियालों के जज्बात को फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, उन्होंने मशवरा ये दिया कि आप इनके मुकाबले पर लश्कर लश्कर कशी जो जो यानी साहिबुल अकल थे, जी शऊर थे, तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप उस वक्त तक लश्कर कशी ना करें कि जब तक आप यानी उनका ओपिनियन अच्छी तरीके से मालूम ना कर लें। लेकिन जियालों की कसरत थी और मुनाफिकीन उनके साथ शामिल हो गए थे तो और कसरत हो गई थी। हजरत अली रतारान भी इसी तरफ मायल होकर लश्कर के साथ निकल आए और ये शरीर अहले फितना और बगावत भी आपके साथ निकले। ठीक है, तो लश्कर के साथ निकल आए। ठीक है, ये अली रज़ा तआला का इज्तिहाद होगा कि उन्होंने जो है वो ये नहीं कि वो अली रज़ा तआला नाउज़ुबिल्लाह उनकी भी अकल जो है वो मुतासिर हो गई थी, बल्कि उन्होंने किसी न किसी हिकमत की वजह से कोई ना कोई ऐसी रीजन देखी होगी कि इस वक्त जो है ना वो इनकी बात मानने ही में खैर है। ठीक है, हालांकि और ये मामला होता है, ये बेहतरीन अकल वाला इंसान, बेहतरीन बसीरत वाला इंसान भी जो है ना उसको कभी ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी ऐसे मामले हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ओहद की लड़ाई के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं थे ना। ओहद की लड़ाई का मामला था या बैत रिजवान वाला मामला था, गालबन इन दोनों में से कोई एक था ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओपिनियन ये था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रह करके जंग की जाए, लेकिन उस वक्त भी जियाले थे, जज्बात में थे, वो चाहते थे बाहर निकल करके काफिरों का मुकाबला किया जाए। ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली थी। ठीक है ना, मान ली थी उनकी बात। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं तकवीनी मामलात। ठीक है, भाई अल्लाह ताला ने ऐसा मामला होने दिया क्योंकि आगे मुसलमानों को कोई लेसन्स देने थे। ठीक है, सबक पढ़ाने थे मुसलमानों को, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देने थे कि जो कि उनको हमेशा काम आए। ठीक है, और साथ साथ कुछ लोगों को जन्नत में भी पहुंचाना था शहादत के जरिए से, शहादत का मरतबा भी देना था क्योंकि वो लोग शहादत मांग रहे थे अल्लाह ताला से, खूब तड़प रहे थे शहीद होने के लिए, बदर में उनको मौका नहीं मिला था तो अब तड़प रहे थे शहीद होने के लिए। ठीक है, तो उनको शहादत का दर्जा भी देना था, तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सारे काम निकलवाना होते हैं ना किसी एक अमल के जरिए से, तो इस वजह से ये तकवीनी मामलात हो जाते हैं जिनमें कि बजाहिर लग रहा होता है कि जी फैसला गलत किया। ठीक है, लेकिन वो गलत फैसला नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला वैसे मामला करवाता है, तो इस वजह से आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते कि नबी अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्ला इल्जाम देना शुरू हो जाए कि क्यों निकले, अगर ना निकलते तो ये सब कुछ ना होता ना, ये दिन ना देखना पड़ता ना, तो क्यों निकले। बिल्कुल उसी तरीके से हजरत अली रतान को भी इल्जाम नहीं दिया जा सकता कि क्यों निकले, हालांकि जो है वो लोग मशवरा दे रहे थे कि ना निकले। ठीक है, उसी तरह अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला को भी इल्जाम नहीं दिया जा सकता कि क्यों निकली। ठीक है, अगर ना निकलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे इखलास वाले हैं, सारे मुज्तहिद थे। जब ये हजरत बसरा के करीब पहुंचे तो हजरत काकार रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास दरियाफ्त हाल के लिए भेजा। ठीक है, तो अब ये दरियाफ्त हाल वहां पहुंच करके कर लिया इन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने, तो उन्होंने अर्ज किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, आपके यहाँ तशरीफ लाने का क्या सबब हुआ। तो सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐ बुनैया अल इस्लाह बैन अन्नास, कि ए मेरे बेटे, बुनैया का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी उम्मातुल मोमिनीन में से थी ना, तो ए मेरे बेटे, प्यारे बेटे बल्कि। ठीक है, क्योंकि या बुनैयर का माना जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से खिताब किया था, ए मेरे प्यारे बेटे। ठीक है, मेरे साथ सवार हो जाओ कश्ती के ऊपर, इन्होंने भी वही इस्तेलाह इस्तेमाल करी कुरान वाली। फिर हजरत हजरताना अन और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी काका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में बुला लिया क्योंकि वो सबसे सीनियर सहाबा यहाँ मौजूद थे, अशरे मुबशरा में से थे। काका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अब ये सारी मुलाकातें जो होती थी ना ये पर्दे के पीछे होती थी बिकॉज ये लोग जो थे वो गैर महरम थे। ठीक है, तो अगरचे के एक टेंट में हो भी रही हो ना एक खेमे में, फिर भी जो है वो बीच में पर्दा हाल होता था और ये हदीसों से साबित है ये बात। उन्होंने अर्ज किया कि कातिलान उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हद शरी जारी करने के सिवा हम कुछ नहीं चाहते हैं। हजरत काका ने समझाया कि ये काम तो इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुसलमानों की जमात मुनज्जम और मुस्तहकम ना हो जाए। इसलिए आप हजरात पर लाजिम है कि इस वक्त आप मुसालिहत की सूरत अख्तियार कर लें। इन बुजुर्गों ने इसको तस्लीम कर लिया, यानी इन तीनों ने तस्लीम कर लिया। हजरत काकार ने जाकर अमीर उलमोमिनों को इसकी इत्तला दे दी, वो भी बहुत मशहूर हुए और मुतमइन हो गए और सब लोगों ने वापसी का कसद कर लिया। और 3 रोज इस मैदान में कयाम इस हाल पर रहा कि किसी को इसमें शक नहीं था कि अब दोनों फरीकों में मुसालहत का ऐलान हो जाएगा और 4थे दिन सुबह को ये ऐलान होने वाला था। और हजरत अमीर उलमोमिनों की मुलाकात हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होने वाली थी, जिसमें ये कातिलान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक नहीं थे। ठीक है, यानी इनको इन्वाइट ही नहीं किया गया था इस मीटिंग के अंदर जो कि 4थे दिन की सुबह को होने वाली थी। ये चीज इन लोगों पर सख्त गिरा गुजरी, ठीक है, हमें साइडलाइन किया जा रहा है। और उन्होंने ये मनसूबा बनाया कि तुम अव्वल हजरत आयशा सिद्दीका तआला की जमात में पहुंचकर कत्ल व गारत गरी शुरू कर दो, ताकि वो और उनके साथी ये समझें कि हजरत अली करम अल्लाह वज की तरफ से अहद शिकनी हुई है और ये लोग इस गलत फहमी का शिकार होकर हजरत अली तआला के लश्कर पर टूट पड़े। उनकी ये शैतानी चाल चल गई। ठीक है, जब तलवारों और तीरों के साथ जो है वो आप किसी के ऊपर पल पड़े ना, तो अब उस वक्त तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इवन नबी अलैहि सलाम के सामने जब ऐसा मामला होता था तो यही है ना, उन गजवात के अंदर, गजवा उहद के अंदर और फिर जो गजवा हुनैन के अंदर, राइट, सहाबा भागना शुरू हो गया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। लेकिन भाई जब इस तरह का मामला होता है तो उस वक्त फिर जो है ना वो, यानी एक नॉर्मल आदमी जो है वो अपना होशो हवास खो बैठता है। ठीक है, फिर वो सही एक्ट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो यही मामला हुआ कि इनकी शैतानी चाल चल गई और हजरत अली करम अल्लाह वज्ह के लश्कर में शामिल होने वाले मुफसिदीन की तरफ से जब हजरत सिद्दीका रहा की जमात पर हमला हो गया तो वो ये समझने में माजूर थे कि ये हमला अमीर उलमोमिनीन हजरत आने के लश्कर की तरफ से हुआ है, क्योंकि कोई तीसरा लश्कर तो वहां मौजूद था नहीं। इसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हजरत अली करम अल्लाह वज्ह ने ये माजरा देखा तो किताल के सिवा चारा ना रहा और जो हादसा आहमी कत्लो किताल का पेश आना था आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वाकया ठीक इसी तरह तिबरी और दूसरे सिक्कात मुअर्रखीन ने हजरत हसन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन अब्बास से की रिवायत से नकल किया है। ठीक है, तो इसी फिर वाकये के अंदर हजरत जुबैर रज़िल्लाहु तआला अन्हु और हजरत तलहा रज़िल्लाहु तआला अन्हु ये दोनों शहीद हुए। और वो मामला ऐसे पेश आया कि दूसरी किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत अली रतान जो है ना वो बाकायदा उन्होंने हजरत जुबैर रतान को बुलाया, ठीक है, और बुला करके उनको नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें याद दिलाई कि तुम्हें याद नहीं है कि एक दफा मैं और तुम नबी अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो तुम दोनों में एक वक्त आएगा कि तुम दोनों में एक तनाजा आएगा, तनाजा पेश होगा और उस वक्त जो है ना जुबैर तुम जालिम होगे, अली मजलूम होगा। ठीक है, अली ताला ने यह हदीस सुनाई है हजरत जुबैर ताला को। जुबैर ताला फरमाते हैं कि मुझे ये बात अब याद आई है, मैं भूल गया था इस बात को। देखिए, नेचुरल लाइफ वाला मामला है। ठीक है, कुछ ऐसी हदीसें भी थी जो कि सहाबा कराम में से कुछ जो है ना वो भूल जाते थे, दूसरे सहाबा को याद रहती थी। ठीक है, तो उनके याद दिलाने पर बात याद आ जाती थी। अब अल्लाह ताला की तरफ से मामला है, ये इसको तकवीनी मामला कहेंगे। ठीक है, तो जब जुबैर अतान ने फरमाया कि हाँ मुझे अब वो बात याद आ गई है, इससे पहले वो याद नहीं थी, जुबैर अतान उसी वक्त मदीना मुनव्वरा वापस रवाना हो गए, उसी वक्त छोड़कर। ठीक है, ये सारा का सारा लड़ाई पेश आ रही है, वो रवाना हो गए। ठीक है, और एक इसी तरह का एक मुनाफिक था या कोई बलवाई था, उसने उनका पीछा किया और जब वो रास्ते में आराम के लिए लेटे ना, इसने उनका सर कलम किया और उनका सर ला करके अली रतान के सामने रख दिया कि देखें आपके दुश्मन का ये सर है। अली रतान ने उस बंदे को एंटर होने से ही इनकार कर मना कर दिया कि मेरे खेमे में उसको एंटर भी ना होने देना और उसको जहन्नुमी होने की खबर दे दो कि तुम जहन्नुमी हो, क्योंकि मैंने नबी अलैहि सलाम से सुना है कि जुबैर का कातिल जहन्नुमी है। ठीक है, इस तरीके से जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और तलहा रतान का भी ये मामला हुआ कि उनको भी अल्लाह तआला ने, अली रतानों ने इसी तरीके से बात फरमाई, तो तलहा रतान भी जो है वो अलग जा करके एक दरख्त की ओट में बैठ गए, ठीक है, उन्होंने लड़ाई वगैरह सब खत्म कर दी, जाके बैठ गए। अब जा करके उन्होंने लोगों को मना क्यों नहीं किया भाई, उस वक्त ऐसा घमसान करण पड़ा हुआ था कि उस वक्त मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था किसी के पास, वो जा करके बैठ गए। जब वो बैठे तो कहीं से एक तीर आया और वो तीर जो है उनके घुटने के ऊपर लगा, जिससे कि बहुत ज्यादा खून जारी होना शुरू हो गया और इतना खून बहा कि तलहा रज़तान की भी शहादत हो गई, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों अशरे मुबशरा सहाबा की शहादत जो है वो जंगे जमल के अंदर हुई। गर्ज आगे पढ़ते हैं कि गर्ज मुफसिदीन और मुजरिमीन की शरारत और फितना अंगेजी के नतीजे में इन दोनों मुकद्दस ग्रोहों में गैर शऊरी तौर पर कताल का वाकया पेश आ गया, और जब फितना फरू हुआ यानी खत्म हो गया तो दोनों ही हजरात इस पर सख्त गमगीन हुए। हजरत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब को ये वाकया याद आ जाता तो इतना रोती थी कि उनका दुपट्टा आंसुओं से तर हो जाता था। इसी तरह हजरत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी इस वाकये पर सख्त सदमा पेश आया। फितना फरू होने के बाद मक्तूलीन की लाशों को देखने के लिए तशरीफ ले गए तो अपनी रानों पर हाथ मार कर ये फरमाते थे कि काश मैं इस वाकये से पहले मर कर नसियम मनसिया हो जाता हो गया होता, जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त। और बाज़ रिवायात में है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा जब कुरान में ये आयत पढ़ती वक़रना फी बुयूतिकुन्ना तो रोने लगती यहां तक कि उनका दुपट्टा आंसुओं से तर हो जाता। आयत मस्कूरा पढ़ने पर रोना इसलिए नहीं था कि करार फिल बुयूत की खिलाफ वर्जी उनके नजदीक गुनाह थी, ठीक है, कि मैंने ये गुनाह करा क्यों, ये वजह नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह था ही नहीं उनके नजदीक, वो मुश्तहिदा थी और कल हम ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनके इज्तिहाद में ये इस आयत का मतलब ये है ही नहीं कि घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलो, ठीक है, तो ये गुनाह की वजह से नहीं रोती थी या सफर ममनू था इस वजह से नहीं रोती थी, बल्कि घर से निकलने पर जो वाकया नागवार और हादसा शदीदा पेश आ गया इस पर तबीयी रंजो गम इसका सबब था, ठीक है, जैसे कि इंसान सोचता है कि काश मैं वो काम ना करता जिसकी वजह से कि जो है वो इतने लोगों का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना रिग्रेट करना जो है वो जायज है, ठीक है, कि मेरी वजह से दूसरों का नुकसान हो गया, इसके ऊपर इंसान अफसोस करे और अगर रोए तो ये चीज जो है वो यानी तकदीर को मलामत करने के के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी, ठीक है। कोई सवाल इस पूरे वाकये के बारे में? एक और बात बस बता दूं, सवाल अगर है तो आप बेशक लिखें, कि एक तो ये थी जंगे जमल, ठीक है, तो जंगे जमल का तो पूरा वाकया ऐसा ही है, ठीक है, ये मुशाजरात सहाबा में से एक जंग है। मुशाजरात कहते हैं जिसमें सहाबा कराम जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हुए और जंग की नौबत आई, ये एक जंग है। तो ये जंग तो बड़ी इजीली एक्सप्लेन हो जाती है कि इस तरीके से मुनाफिकीन ने करवाई। एक और भी जंग है सहाबा कराम के दरमियान, वो कौन सी जंग है जी? वो जंग है जंगे सिफीन, ठीक है, सौद फा या नून जंगे सिफीन। उस जंग के अंदर आयशा सिद्दीका रताना का कोई रोल नहीं था, वो क्या के दरमियान हुई थी? वो भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन के दरमियान हुई, ठीक है, जो कि शाम के गवर्नर थे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन के जमाने से, शाम के वो गवर्नर थे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन, ठीक है, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन के बेटे, राइट, और हिंदा जो कि बीवी थी अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन की, बाद में मुसलमान हो गई थी, उनके बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन थे, ठीक है। तो इन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन से बैत नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी? क्योंकि इनका भी यही मुतालबा था कि पहले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को सजा दी जाए, फिर जो है वो बैत की जाए, ठीक। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मौकफ ये था कि भाई जो अभी हमने पढ़ा कि भाई ये नहीं हो सकता इन हालात के अंदर, तो जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर उनका उनसे मैं किसास लूंगा, ठीक है। लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो उन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया था, और उनका मुतालबा ये था कि पहले किसास फिर मैं बैत करूंगा। अली रतान का था कि नहीं, तुम पहले बैत करो। बाकायदा लश्कर कशी हुई थी और इन दोनों के दरमियान भी जंग शुरू हो गई थी, और उसमें भी 13,000 लोग जो है ना जो जो कि उस वक्त मुसलमान थे, चाहे वो मुनाफिक हों अंदर से, लेकिन ओवरऑल तो बाहर से तो मुसलमान ही कहलाते थे सारे के सारे, ठीक है, तो उनमें नेक मुसलमान की तादाद ज्यादा थी और कुछ ऐसे भी लोग होंगे लड़ाई करवाने वाले, ठीक है। तो बहरहाल लड़ाइयां हुई थी और 13,000 जो है मुसलमान उस लड़ाई के अंदर भी फिर शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों जो जंगे हैं ना, ये दोनों जंगे मुशाजरात सहाबा कहलाती हैं, और इन दोनों को जो है समझना आज के दौर में इसलिए जरूरी हो गया है कि जैसे कि आप में चंद को मालूम है कि इन लोगों ने जो सहाबा के खिलाफ मुसलमानों को बदगुमान करना चाहते हैं, इन्होंने अब स्कूल के बच्चों की किताबों में मुशाजरात सहाबा के वाकयात डालने शुरू कर दिए, ठीक है। तो बच्चे जब इनको पढ़ते हैं तो उनके जहन में फिर उनका टीचर जो है ना, जो कि शैतान का एजेंट बना होता है, वो क्या डालता है कि देखो सहाबा जो है वो तो इतना अरसा भी सबर ना कर सके, और उन्होंने जो है नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के फौरन ही बाद जो है वो लड़ना शुरू कर दिया, और देखो कताल की नौबत आ गई और कितने सारे जो है वो दुनिया से इंसान जो है वो चले गए इसकी वजह से। तो ऐसा ऐसी बातें जब बच्चे पढ़ते हैं तो सहाबा के बारे में उनके दिलों में शक आ जाता है, जिसकी वजह से उनका दीन जो है ना वो मुतजलजल हो जाता है, और फिर वो आगे जा करके किसी बड़े फितने में मुबतला होने के लिए प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई सवाल? तो नेक्स्ट हेडिंग, अजवाज मुतहरात को कुरान की तीसरी, चौथी और पांचवी हिदायत। व अकिमन सलात व आतीन जक़ात व अतिअन्नल्लाह व रसूला, यानी नमाज कायम करो, जक़ात अदा करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। दो हिदायतें तफसील के साथ पहले गुजर चुकी हैं, वो क्या थी? गैर मर्दों से कलाम में नरमी और नज़ाकत से इज्तनाब, और घरों से बिला जरूरत ना निकलना। तीन हिदायतें इसमें आ गईं। ये कुल पांच हिदायत हैं जो औरतों के लिए मुहिमात दीन में से हैं। मुहिमात अहम चीजों को कहते हैं। ये पांचों हिदायत सब मुसलमानों के लिए आम है, सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए नहीं है। मस्कुरा हिदायत में आखिरी हिदायत में तो किसी को शुबा नहीं हो सकता कि ये अज़वाज मुतहरात के साथ मखसूस हो। मस्कुरा हिदायत में आखिरी हिदायत में तो किसी को शुबा नहीं हो सकता, नमाज रोजा और यानी शुबा नहीं हो सकता कि अजवाज मुतहरात के साथ मखसूस हो। नमाज जक़ात और अल्लाह और रसूल की अतात से कौन सा मुसलमान मर्द औरत मुस्तस्ना हो सकता है? बाकी पहली दो हिदायतें हो गई जो औरतों के पर्दे से मुतालिक हैं, तो जरा गौर करने से ये भी वाज हो जाता कि वो भी अजवाज मुतहरात के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि सब मुसलमान औरतों के लिए यही हुक्म है। रहा ये मामला कि इन हिदायत के जिक्र से पहले कुरान ने फरमाया है कि लस्तुन्ना का अहद मिन निसाई इन तकीतुन्ना, यानी अजवाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं, अगर वो तकवा अख्तियार करें। इससे बज़ाहिर तख़सीस मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि दूसरों औरतों की तरह नहीं हो, तो तख़सीस ही मालूम होती है ना कि ये खास है। तो इसका जवाब, उसका वाज़े जवाब ये है कि तख़सीस अहकाम की नहीं है, बल्कि उन पर अमल के इहतमाम की है। ठीक है, जैसे कैसे क्लियर कर दिया माशाल्लाह मसले को, कि अहकाम की तख़सीस नहीं है कि जी खास उनके लिए यह अहकाम है, दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि अमल का अहतमाम इनको ज्यादा करना चाहिए। यानी अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं, बल्कि उनकी शान सबसे आला और अरफा है, इसलिए जो अहकाम तमाम मुसलमान औरतों पर फर्ज हैं उनका अहतमाम इनको सबसे ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि क्यों ऐसा है, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे किसी किसी काम से जरा कुछ काम को अटेंड करना है हमारे साथ के साथ भी। ठीक है, कोई सवाल अगर है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। कल के लिए जैसे कि शुरू में अनाउंस किया था, आपने से कुछ मौजूद नहीं थी, कि कल और परसों इंशाल्लाह हुसूलुल शाश पढ़ेंगे, और जो इनफॉर्मल क्विज का बताया था संडे के लिए, तो उसके लिए आप लोग कल तैयार होकर के आए। लेकिन इस क्विज का मकसद जो है वो सिर्फ ओवरव्यू है या रिव्यू है प्रीवियस क्लासेस का, ठीक है? कोई रिटन टेस्ट या कोई ऐसा वो चीज नहीं है, लेकिन एक नजर देख कर आएंगी तभी किसी सवाल का जवाब देने के काबिल होंगी। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।